તારીખ 27/8/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 432 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 170 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
અંબાલાલ કા લિખા લિખા હુઆ પત્ર પહોંચા હૈ, ચિઠ્ઠી કા પહોંચ દિયા હૈ. આત્મા કો વિભાવ સે અવકાશિત કરને કે લિયે ઓર સ્વભાવ મેં અનવકાશ રૂપ સે રહેને કે લિયે કોઈ ભી મુખ્ય ઉપાય હો તો આત્મારામ એસે જ્ઞાની પુરુષ કા નિષ્કામ બુદ્ધિ સે ભક્તિ યોગ રૂપ સંભાવ. ક્યા લિખતે હૈ કે અગર હમ હમારે આત્મા કો વિભાવ સે દૂર કરના ચાહતે હૈ, અવકાશ કરના મને ખાલી જગા હો જાય, વિભાવ ઓર આત્મા દૂર હો જાય ઓર સ્વભાવ મેં અનવકાશ મેને એક સમય ભી દૂર નહીં હોવે, સ્વભાવ મેં રહેને મેં એક સમય ભી દેર નહીં લગે, એસા હોને કે લિયે કોઈ ભી મુખ્ય ઉપાય હૈ તો આત્મારામ એસા જ્ઞાની પુરુષ જિસકી પરિણતિ આત્મામય હૈ ઉસકો કહેતે હૈ આત્મારામ. તો આત્મા મેં આરામ કરતે હૈ, આત્મા મેં હી પડે હુએ રહેતે હૈ, આત્મા મેં મસ્ત હૈ ઉસકો કહેતે હૈ આત્મારામ. જો સંયોગ કી ચિંતા નહીં કરતે હૈ, કબીરજી જૈસે કબીરજી ને લિખા કે કરના ફકીરી ક્યા દિલગીરી, હમ તો ફકીર હો ગયે અબ હમકો ક્યા દિલગીરી હૈ, ક્યા ચિંતા હૈ, સદા મગન મન રહેના, સદા આત્મા મેં મસ્ત રહેના. એસે જો જ્ઞાની પુરુષ હૈ અપને આત્મા મેં રહેતે હૈ, તો વિભાવ મેં ભી નહીં રહેતે, શરીર મેં ભી નહીં રહેતે ઓર કિસી સંયોગ કે બીચ મેં ભી નહીં રહેતે. એસે પુરુષ કા નિષ્કામ બુદ્ધિ સે ભક્તિ, એસે ભક્તિ નિષ્કામ બુદ્ધિ, કોઈ અપેક્ષા બિના, કોઈ કામના બિના, કોઈ ઈચ્છા બિના, કોઈ ફલ કી વાંછા બિના, નિષ્કામ બુદ્ધિ છે ભક્તિ કે પરિણામ હો જાય, ભક્તિ કે પરિણામ રહે ઉસકો ભક્તિ યોગ કહેતે હૈ. યોગ અનેક પ્રકાર કે હૈ, પરિણામ જિસમે લગે ઉસકો કહેતે હૈ યોગ. યોગ મેને જોડાણ હોના, મૂળ ધાતુ કો યુજ હૈ સંસ્કૃત મેં, યુજ યોજ ટુ જોઈન, હેરાન કરના. ભક્તિ મેં યોગ હોવે, એસા સંગ મિલે તો આત્મા સ્વભાવ મેં અનવકાશિત રૂપ સે રહે સકતા હૈ. દેખો હમારા લડકા અમેરિકા મેં પડતા હૈ, હમકો લગતા હૈ કે દૂર ચલા ગયા, હમારે પરિણામ વહાં લગ જાતે હૈ, યા હમારી કોઈ ઓફિસ કી બ્રાન્ચ વહાં હોવે, चलो एक तो मोती का शोरूम बनाया बम्बई में, दूसरा न्यूयॉर्क में, है? कितनी देर लगे जाने में, है? इसी को कहते हैं योग। योग किसको कहते हैं? परिणाम लग जाए उसको कहते हैं योग। परिणाम की गति उतनी तेज है तो उसके आगे प्लेन कुछ नहीं है। टेलीफोन भी नंबर घुमाना पड़ता है, लाइन मिलती है तो बात होता है। यहाँ योग वाले को तो लाइन मिल जाती है, वैसे ही मिल जाती है। प्रसाद का बिल तो होना ऐसा नहीं करना, प्रसाद तो होना, प्रसाद तो होता है। ऐसा निष्काम बुद्धि से सम करने में, उपयोग करने में, निष्कामता में कामना छोड़नी पड़ती है, वो बिल नहीं है क्या?
वो हमारी है ही नहीं कामना।
अभी तक जो कामनाएं थी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये होगा वो होगा, ये सब कामनाएं छोड़नी पड़ती है। समाज प्रतिबंध छोड़ना पड़ता है, कुटुंब प्रतिबंध छोड़ना पड़ता है, देह प्रतिबंध होता है, ये सब देना पड़ता है कि नहीं देना? प्रकृति का समर्पण करना पड़ता है।
वो तो बोझा हटने वाली बात हो गई ना, उसमें ना भार लगता है। जो बोझा हट जाता है उसमें भार ना होता है।
बोझा हट जाता है वो बात जरूर है, लेकिन छोड़ते वक्त थोड़ा परिश्रम तो पड़ता है, ऐसे नहीं छूटता। अनादिकाल का आदत है, ऐसा नहीं छूटता। वो पुरुषार्थ का विषय है। तो राजू भाई बोले थे कि ज्ञानी कहेंगे तो देखो भाई, धर्म करने में कुछ लगता नहीं, धर्म करने में कुछ लगता नहीं, कुछ नहीं लगता। मैंने आपको उतना पैसा देना पड़ेगा, इतनी रकम देंगे तो धर्म होगा, ऐसी कोई बात तो ज्ञानी पुरुष में कोई कंडीशनल बात तो होती नहीं है। बोले कि भाई धर्म तो ऐसे ही, आपको करवट बदलना है, अंदर से आत्मा को फिरना है, कुछ लेने देने की बात नहीं है। एक ओर से कुछ देना नहीं पड़ता है, दूसरी ओर से सारी संपत्ति का ममत्व छोड़ना पड़ता
है। हाँ
वो अन्य मत में पद है, हरिनो मार्ग छेशु रानो नहीं कायरनो काम प्रथम पहलू मस्तक मुखी वर्ती ले वो
नाम
जाना। तो ऐसे तो कहेंगे कुछ देना नहीं है, और बाद में कहेंगे कि तुम्हारा मस्तक देना पड़ेगा, तो तुम तो वही तुम्हारी तैयारी है, मस्तक देने की तैयारी है, यानी शरीर प्रतिबंध छोड़ने की तैयारी है, तो धर्म हो गया। देहात्म बुद्धि छूटेगी तो आत्मा में आत्मबुद्धि होगी। दो तरह की बात तो आएगी,
मस्तक झुका लिया तो देखना सुनना सब बंद हो जाएगा। मस्तक के दे दिया तो देखना सुनना सब बंद, चखना पकना।
अच्छी बात है, बहुत देखा कौन कौन को जी भर भर देखा, एक एक कण को जी भर भर के देखा है, फिर भी ये जो कहीं न मिली सुख की रेखा, फिर भी सुख की एक लकीर भी नहीं मिली, सुख के लिए देखा लेकिन सुख का एक लकीर भी नहीं। हाँ देख नारा दादी हरि नो मार्ग से माही पीड़िया से माँ सुख माने देख नारा। तो अंदर जो पड़ता है संभलाता है इस मार्ग में सब प्रकार की वांछाएं पर पूरी हिम्मत से काम लेता है उनको तो महासुख मिलता है। जिसका हिम्मत नहीं है वो बाहर खड़े खड़े रहकर देखता है कि हमको तो हम तो दुखी रहे हैं, ये सुखी हो गया हम तो दुखी रह गए। पर गरीब पंक्ति हो गया है हमारे भणवा में आती
थी
उसे बीजा में बीजा में तो
प्रीतम दास
है
आप प्रीतम दास आई में मारा
बहुत सफल होने के लिए निवृत्ति क्षेत्र में ऐसा योग प्राप्त होना यह कोई बड़ा पुण्य का योग है। इस कार्य की सफलता के लिए निवृत्ति क्षेत्र में ज्ञानी का कोई संग मिल जाए तो यह कोई बड़ा पुण्य का योग है, ये महापुण्य। और ऐसा पुण्य योग बहुत प्रकार के अंतराय वाला प्राय इस जगत में दिखने में आता है। निवृत्ति योग में ज्ञानी पुरुष का योग मिलना बहुत दुर्लभ है, खुद को भी निवृत्ति कहाँ मिलती है। निवृत्ति क्षेत्र में दो बात होती है, मुमुक्षु भी निवृत्ति क्षेत्र में जाता है तो उस वक्त वहां उसको कोई दूसरी उपाधि नहीं है, पर प्रवृत्ति क्षेत्र में उसको योग मिलता है तो अनेक प्रकार के कार्यों में प्रसंगों में परिणाम लगे हुए रहते हैं। निवृत्ति क्षेत्र में परिणाम और जगह मिल रहे तो वहां जो फायदा होता है वो अनेक गुणा होता है। प्रवृत्ति क्षेत्र में जो फायदा होता है उससे सत्संग का निवृत्ति क्षेत्र में जो फायदा होता है वो अनेक गुणा होता है। ऐसी बात नहीं, इसलिए हमको बार बार समीप में है ऐसा स्मरण करके जिसमें इस संसार का उदासीनपना कहा हो यही हाल तो पढ़ो और विचार करो। ऐसा ग्रंथ जिस ग्रंथ में संसार का उदासीनपना कहा है ऐसे वैराग्य का ग्रंथ पढ़ो और उस पर विचार करो और उसके साथ ऐसा रखना कि हम आपके समीप में हैं। जब कोई बोध का विचार करना है तो उस वक्त ज्ञानी पुरुष को हृदय स्थल में प्रत्यक्ष करना है। जैसे हम ये रचनामृत को पढ़ रहे हैं तो उस तरह लेना है कि कृपालु देव हमको प्रत्यक्ष सामने बैठ करके हमको ही कह रहे हैं। बोध अंगीकार करने के लिए प्रत्यक्ष वत ले लेना, तो जैसे प्रत्यक्ष ही कह रहे हैं फिर भी वो प्रत्यक्ष नहीं है वास्तविक रूप से वो हमारे पास नहीं है तो इसका वियोग का दुख हमको लगना चलेगा चलता है ऐसा नहीं, ये सही यथार्थ परिस्थिति है मनुष्य की। मनुष्य की स्थिति कैसी होती है कि उसको सत्पुरुष का सत्संग प्रत्यक्ष सत्संग का वियोग का दुख रहता है, फिर भी उसके वचन मिलते हैं तो उसको हृदय में प्रत्यक्ष करके अंगीकार करते हैं, अंगीकार करने के लिए उसकी प्रत्यक्षता को देखते हैं और उस तरह से उनके वियोग में भी रहता है, दोनों बात बनती है। आत्मा रूप से केवल आत्मा वर्ते, कैसे वर्ते, आत्मा आत्मा रूप वर्ते, आत्मभाव में वर्ते, ऐसा जो चिंतन रखना वही लक्ष्य है, शास्त्र का परमार्थ रूप है। शास्त्र का जो सारांश है, परमार्थ सारांश है, परम प्रयोजन रूप सारांश है, वो तो उतना है आत्मा आत्मा रूप में वर्तना करे, अन्य रूप में वर्तना नहीं करे। मैं मनुष्य हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मैं अपने आत्मभाव में ही रहना चाहूंगा, मुझे आत्मभाव में ही रहना है। यह आत्मा मैंने आत्मस्वरूप, यह जो भीतर में आत्मस्वरूप है, पूर्व में अनंत काल व्यतीत किए भी जाना नहीं, अनंत काल चला गया, हमने आत्मस्वरूप को नहीं जाना, हमारे स्वरूप को ही नहीं जाना, ऐसा बना है। अनंत काल चला गया फिर भी हमने हमारा स्वरूप को नहीं जाना, ऐसा बन गया, बन चुका है, ऐसा ही बना है। इसके ऊपर से, इस ऊपर से ऐसा लगता है, इस बात से ऐसा लगता है कि यह आत्मस्वरूप को जानने का कार्य सबसे विकट है, आसान नहीं है। अनंत काल बीत गया फिर भी हमने आत्मस्वरूप को जाना नहीं, धर्म साधन किया, नियम नियम संयम शास्त्र ज्ञान सब कुछ किया, लेकिन हमारे स्वरूप को नहीं जाना है, अनंत काल चला गया, इस पर से लगता है कि ये कार्य आसान नहीं है, सबसे कठिन है, सबसे विकट है। अथवा तो जानने का, आत्मस्वरूप को जानने का तथारूप योग परम दुर्लभ है, यम नियम संयम शास्त्र ज्ञान किया, भक्ति पूजा दया दान यात्रा सब कुछ किया, लेकिन जानने का कुछ योग होना चाहिए, ऐसा योग नहीं। मैंने जिसको आत्मज्ञान है उसके पास से आत्मज्ञान लेने की हमारी योग्यता को हमने तैयार नहीं, एक तो हमारी योग्यता को हमने तैयार नहीं की, दूसरा ऐसा योग हमको मिला, दोनों बात में कसर रही। यानी मिले होंगे, तीर्थंकर भी मिले होंगे, लेकिन हमारी योग्यता नहीं हुई तो हमने लिया नहीं, हमने कुछ लिया, हमारा ध्यान नहीं गया, हमारा प्रयोजन के हमारा ध्यान नहीं गया।
प्रयोजन पे ध्यान नहीं गया, प्रयोजन पे ध्यान नहीं गया माने हम क्या मतलब?
इसका मतलब वो है कि वर्तमान में हम जिस योग्यता में हैं, इस योग्यता में हमें कौन सी बात हमारे प्रयोजन की हमें अंगीकार करनी चाहिए, इस पर हमारा ध्यान नहीं गया। वर्तमान जो भले की योग्यता अलग अलग है, एक योग्यता में सब नहीं होते, तो खुद को ये मालूम होना चाहिए कि ये मेरे काम की बात आई। बात तो अनेक चलेगी सत्संग में, सत्संग चलेगा तो अनेक बातें चलेगी, इसमें ये मेरे काम की वर्तमान में है ऐसा ध्यान नहीं। क्यों नहीं गया? कि ऐसा दृष्टिकोण रख करके, यानी ऐसा उद्देश्य को धारण करके हमने सत्संग नहीं किया। यम नियम किया, शास्त्र पढ़ा, सत्संग भी किया है, सत्संग नहीं मिला है और नहीं किया है वो भी बात नहीं, लेकिन सत्संग सफल हो गए ऐसा कार्य हमने नहीं किया।
क्रम विपर्यास है, क्रम विपर्यास भी हो रहा है क्या? क्रम का विपर्यास,
क्रम भी विपर्यास किया होगा, हमारी मनमानी किया होगा, तो वो क्रम विपर्यास को स्वच्छंद कहते हैं। स्वच्छंद होने से क्रम विपर्यास होता है, कि ज्ञानी के मार्ग पर नहीं चलता है, अपनी मति के अनुसार चलने का स्वच्छंद होता है। और आग्रह रहता है, मैं तो ये समझता हूँ, जो मैं समझता हूँ वो सही है, उसको कहते हैं अपने मत का आग्रह, अपने अभिप्राय का वो सही है, उसको कहते हैं अपने मत का आग्रह, अपने अभिप्राय का आग्रह, ये भी सत्संग को सफल नहीं होने देता। निष्पक्ष होकर के सत्संग करो, अपना अभिप्राय की पकड़ रखे नहीं करो। और वर्तमान में जो एक परिस्थिति देखने में आती है वो सबसे खतरनाक है, वो परलक्ष्य है। परलक्ष्य से जो सत्संग करता है उसका सत्संग सफल नहीं होता। क्यों? कि परलक्ष्य वाले को स्वलक्ष्य का अभाव होता है, तो अपना प्रयोजन स्वलक्ष्य में होता है, स्वलक्ष्य वाले को ही अपना प्रयोजन का दृष्टिकोण होता है, दूसरे को होता ही नहीं। इसलिए जो परलक्ष्य करता है वो सत्संग को निष्पन्न करता है। परलक्ष्य में क्या करता है? तो जैसे हम संसार में थे तो हमारे सगे संबंधी को देखते रहते थे, पड़ोसी को देखते रहते थे कि देखो इसके घर में गाड़ी आई, हमारे पास गाड़ी, वो गाड़ी नहीं है, यहाँ गाड़ी नहीं है, इसके घर में वो चीज आई, हमारे पास नहीं है। तो हमारे भाई को देखेंगे कि भाई को ऐसा हुआ, हमको नहीं हुआ। या हमारे वे भाई को देखेंगे उसको वो है, हमारे पास नहीं है, या हमारे पास है उनके पास नहीं है। दो में से या तो हमारे पास है तो उनके पास नहीं है वो देखेंगे, या तो इनके पास है तो हमारे पास नहीं है वो देखेंगे। अब ये मुमुक्षु वृंद है, ये सर्कल में हम सत्संग करते हैं, वो भी एक परिवार है, वो भी एक परिवार है। तो पहले हम वही परिवार को देखते थे, अब हम क्या करते हैं इस परिवार को देखते हैं। वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करता है। उस तरह से जिसको दूसरे की पंचायत रहती है वो सत्संग के लायक नहीं, उसका सत्संग परलक्ष खा जाएगा। सत्संग करेगा तो सत्संग में जो भी है समझने का मिलेगा वो तो परलक्ष खा जाएगा।
भाई जी इसमें मेरा एक प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न है मेरा, जैसे कि दो मुमुक्षु हो और आपस में वो चर्चा करते हो, एक एक मुझवन का प्रश्न आया हो सामने में और उसमें से अपना एक्सपीरियंसेस करके और एक दूसरे से प्रेरणा लेने की अगर कोई बात होती हो तो उसको क्या कहा गया?
उसको तो सत्संग कहते हैं, उसको परलक्ष नहीं कहते हैं। समूह में नहीं बैठना वो बात नहीं है।
नहीं, मैं इंडिविजुअली की बात कर रहा था, दो जन के बीच।
दो नहीं हो, दो हो या बारह हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दो की भी आपत्ति नहीं है, बारह की आपत्ति नहीं है और बारह सौ की भी आपत्ति नहीं है। समूह छोटा हो या बड़ा हो, समूह को हमारे प्रयोजन में आगे बढ़ना है उतनी बात रहेगी, तो दो में भी काफी है और बारह सौ में भी काफी। तो ये इसको हम तो सत्संग बोलते हैं। और हमारा प्रयोजन को छोड़ करके वो ऐसा करता है, उसने ऐसा किया,
वो पर लग ऐसा किया, वो पर लग।
और प्राय ये परिस्थिति रहती है। और फिर समस्या खड़ी होती है, हमको क्यों फायदा नहीं होता है? तो सत्संग बहुत किया, इतने साल से सत्संग किया, हमको फायदा कुछ नहीं मिलता, क्या से देखे? परलक्ष तो अभी गया नहीं, अभी तक भी परलक्ष गया नहीं, फायदा होने वाला। ऐसे विषय को दर्शाते हुए बताते हुए उनको तो सुगा नहीं भी बहुत याद आ रहा सुगानी जी का परिचय हमको हुआ, बातचीतें हमारे बीच में भी चलती थी। वो ऐसा बोलते थे कि हम गुरुदेव के व्याख्यान सुनने को बैठते हैं तो मेरे बगल में कौन बैठा है हमको मालूम नहीं पड़ता, नहीं रहता, हम देखते ही नहीं कि इधर कौन बैठा है या उधर कौन बैठा है। करीब करीब हम साथ में बैठते थे, कभी आगे पीछे भी बैठ जाते थे, ऐसा भी रहता। लेकिन वो गुरुदेव के सामने देखते थे सुनते वक्त, आगे ग्रंथ का थंबनेल रहता था बड़ी पे, ऐसे दो हाथ पकड़ कर टकटकी लगाकर, बगल में कौन बैठा है ऐसे नहीं देखते, बिल्कुल पर लक्षण है। हमें क्या प्रयोजन दूसरे के प्रवृत्ति से, कार्य से, योग्यता से हमें क्या प्रयोजन? सत्संग में बैठो तो गुण दृष्टि से देखो, किसी में कोई गुण हो तो उसकी वांछा करो कि हमारे में ऐसा गुण कैसा कैसे हो। बात देखनी थी नहीं, बाकी अयोग्यता के तो असंख्य प्रकार हैं, हमें क्या लेना देना? किसी के अयोग्यता से हमें क्या लेना देना है? सहज रूप से आत्मकल्याण की चर्चा चर्चा व्यक्तिगत तो होनी ही, अगर व्यक्तिगत किसी की चर्चा या किसी के लक्ष्य से कोई बात किया तो ये सत्संग सत्संग नहीं रहा, ये सत्संग असत्संग हो जाता है। और किसी का दोष की बात चर्चा की करती है तो ये कुसंग हो जाता है, ये बात है। क्या कहते हैं कि इस आत्मा ने अनंत काल व्यतीत किया फिर भी अपना स्वरूप को नहीं जाना, इससे ये बात साबित हो गई कि ये कार्य आसान नहीं है। अभी भी देखो आसान हो तो कर लिया होता। आत्मज्ञान की तो चर्चा चलती है फिर भी आत्मज्ञान क्यों नहीं होता है, तो काम आसान। और ऐसे आत्मज्ञान होने का तथारूप योग, जैसा चाहिए वैसा योग, ये परम दुर्लभ है। योग भी परम दुर्लभ है, यथार्थ सत्संग भी परम दुर्लभ है।